चलिए आगे शुरू करते हैं।
आगे बहुत ही प्यारा रुकू है, 15 नंबर, 122 से 129, मोमिन और काफिर का कंपैरिजन, तकाबली जायजा। अब अमन का न मई तनवा खई ना हो व जल ना लहू नूरा। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह कुफार को इनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों यानी मिलियनेरियंस वगैरह ही को जरायम का मुर्तकिब बनाया, यानी ज़्यादा गुना बड़े लोगों से होते थे, ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको ज़रा खबर नहीं। और जब इनको कोई आयत पहुँचती है तो यूं कहते हैं, हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह ही खूब जानता है कि वो कहाँ से अपनी पैगंबरी रखे। अन करीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सजाए सख्त भी। तो जिस शख्स को अल्लाह रास्ते पर डालना चाहे, दुआ कीजिए। या अल्लाह के कुछ इरादों की बात है, हम दुआ कर लें कि अल्लाह हमें भी अपने इस इरादे में शामिल कर ले। क्या करता है? इसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह देखना चाहता है इसके सीने को बहुत तंग और घुटावा कर देता है। जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयात को साफ साफ बयान कर दिया, और इन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है इनके अमाल की वजह से। फील कीजिएगा इसको बाद में। और जिस रोज़ अल्लाह तमाम खलाइक को जमा करेगा यानी क्रिएशंस को, कहेगा, ऐ जमात जिन्नात की, तुमने इंसानों में से बहुत से अपना लिए। जो इंसान इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था और हम अपनी इस मुअय्यन मियाद तक आ पहुँचे, यानी अपॉइंटेड टाइम जो तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमाई, यानी उसको असाइन किया, अपॉइंट किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सब का ठिकाना दोजख है जिसमें हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला है। और इसी तरह हम बास कुफार को बास के करीब रखेंगे इनके आमाल के सबब। क्या पता चला कि ईमान से मुतल्लिक दो आयात हैं इसमें, 124 अनाम। इसका थीम क्या है? अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किसके लिए कौन सी जगह मुनासिब है। यानी हम बार बार ज़िंदगी में कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का इरादा हमारे लिए कुछ और ही होता है। फिर आयत 125 वाला नाम में हमने देखा कि ईमान वाला दीन की हिकमतें पहचानने लगता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा ईमान वाला कर दे ताकि हमें अल्लाह की बातें समझ आने लगे। अब यहाँ आयत आई थी, वल्लाहु यदु इला दारुस्सलाम, अल्लाह का अपना नाम अस्सलाम। हम कौन है? मुस्लिम। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। तो एक कोट लिखिएगा, अस्सलाम ने इस्लाम के जरिए हमें दारुस्सलाम की दावत दी है। आइए ना इस जन्नत में, जन्नत के नामों में से एक नाम दारुस्सलाम है। कोई लबैक कहने वाला? कौन कौन जाना चाहता है? हु वॉन्ट टू एंटर टू दारुस्सलाम? अल्लाह मुझे आप सबको वहाँ जमा कर दे। फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं? सेलिब्रिटीज़ यानी मशहूर लोगों की अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी। माशरे में एक छोटी सी क्रीम होती है, वो बस क्रीम ऊपर थिन सी तह ही होती है, नीचे सब छाछ ही होती है। लोग उन्हीं को देख कर फॉलो करने लग जाते हैं। तो ज़िंदगी में अपने आइडियल यानी हीरो का इंतखाब करते हुए समझ से काम लेना चाहिए। ख्याली और अमली हर किस्म की नापाकी से बचना है इंशाल्लाह। रुकू नंबर 16, आयत नंबर 130 से 140, जाहिली शरीयत। यहाँ आपको बिदत का टॉपिक खुल के समझ आएगा। बिल्कुल तसव्वुर की निगाह से अपने आप को उस माशरे में ले जाएं, और साथ ही साथ आप खुद चाहें तो कर लें, आज हम मुसलमानों में क्या क्या काम शुरू हैं जो अल्लाह के नबी और सहाबा ने नहीं किए। मैं दुआ कर देती हूँ कि खुद ही अल्लाह आपके दिलों में डालता जाए कंपेयर करते हुए। या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे? जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस दिन के आने की खबर देते, वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी जिंदगी ने भूल में डाले रखा, और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे। ये इस वजह से कि आप कर किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों, यानी अल्लाह अनजान पने में किसी को नहीं पकड़ता, पहले पूरी हुज्जतें तमाम करता है, बंदा ना माने तो फिर अल्लाह की पकड़ में आता। अब इसको हाईलाइट कीजिए और अपने लिए दुआ करिए, वली कुल्लिन दरजात, और हर एक को इसके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे, और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं, और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सब को उठा ले जाए और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया है। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली चीज़ है और तुम आजिज़ नहीं कर सकते। क्या चीज़ है वो? क़यामत, मौत। आप ये फरमा दीजिए कि मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ, सो अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि सालिम का इंजामे कार किसके लिए नफ़ामंद होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह न होगी। यहाँ से अब उनकी बिदात ज़रा सुन लीजिए कि यानी खाने पीने के मामले में उनके टोटके क्या थे, और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं यानी कैटल्स, इन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया और ख़ुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है। फिर जो चीज़ इनके माबूदों की होती है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती, और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो इनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती है। क्या बुरा फैसला वो करते हैं? यहाँ उनकी एक बिदत थी, आपको तसव्वुर से ज़रा सा समझना होगा। किसी किसान के पास ज़मीन का एक टुकड़ा होता, उस टुकड़े के तीन हिस्से करता या तीन खेत होते, मिसाल है ये कमरा एक खेत है, ये दूसरा एक तीसरा। अपने जोम में सोच लेते कि ये जो खेत बीच वाला है ना, इसकी कमाई से मैं खुद खाऊंगा, आगे दूंगा, अपनी ज़रूरियात पूरी करूंगा। इस सीधे हाथ वाली कमाई जो है ना, इसको मैं अल्लाह के नाम पे सदका कर दूंगा, और ये जो तीसरा खेत है ना, इसकी फसल को मैं अपने बुतों के नाम पे डिवोट कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा। अब आम हालात में तो यही होता, कभी क्या होता कि ये जो अल्लाह के लिए मखसूस था ना, इसकी फसल को कीड़ा खा जाता, या कोई आफत आती या फसल ना उगती, तो कहते फिर हम क्या करें, अल्लाह का था, अब नहीं हुआ तो ना सही। कभी इनके बुतों वाले हिस्से या खेत की फसल को कोई नुकसान होता तो कहते ना ना ना, इस साल हम अल्लाह के इस खेत वाली फसल के नफे को बुतों के नाम डाल देंगे, ये है गुमान। कितने बेवकूफ लग रहे हैं, हम तो नहीं ऐसा करते ना, कभी हमारी जिंदगी में 19-20 और सबसे पहले किसका हक मारते हम? अल्लाह का। मेहमान ही आ जाए तो मगरिब की नमाज किसकी गई? हमारी गई। खात तंग है, नहीं नहीं जो दे रहे थे अब नहीं दे सकते। दुनियादारी तो चलती रहती है, दीनदारी ख़त्म हो जाती है, तो ये बांट अल्लाह को उनकी अच्छी नहीं लगी, एक और बिदत। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल को तारीफ के काबिल बना रखा है, ताकि वो इनको बर्बाद करें और ताकि इनके दीन को इन पर शुबे वाला कर दें। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ऐसा काम न करते, तो आप इनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय इनके जिनको हम चाहें, और मवेशी हैं जिन पर सवारी या बोझ डालना हराम कर दिया गया, और मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह पर इफ्तरा, बोहतान, झूठ, यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ खुद ही फैसले करते हैं बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इनके झूठ बांधने की सज़ा दे देता है, और वो कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है। हाँ, अगर वो मुर्दा है तो इसमें सब बराबर है, यानी कोई जानवर मरता, बकरी मरती तो बकरी के पेट में बच्चा होता, प्रेग्नेंट होती। अब वो बच्चा अगर अंदर जिंदा होता सब होता तो कहते मर्द खा ले, और अगर वो मुर्दा पैदा होता तो कहते औरतें तुम खा लो। जिंदा वाले के अंदर वो औरतों का ऐसा नहीं, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बेकारियात। अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं थी कही जो इन्होंने बना ली। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सज़ा देता है, बिलाशुबा वो हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज ब्राह हमाकत बिला किसी सनत के कतर कर डाला, और जो चीज़ें इनको अल्लाह ने खाने पीने के लिए दी थी इनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। क्या पता चला, इस पूरे रुकू में थोड़ा सा तवील रुकू था, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई। पहली बात तो ये है कि मुआशरे और वक्त की बातों से ऊपर उठकर लोग क्या कर रहे हैं, खानदान क्या कर रहा है, बिरादरी क्या कहती है, तौहीद वाले अपने दिल का लिखा पढ़ रहे होते हैं। मवाहिद को अल्लाह ताला एक किस्म की फुरकान दे देता है। हदीस से भी इसका रेफरेंस हमें मिलता है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के बुरहान से देख लेता है। ये जो आज के दौर का भी मसला है और उस दौर का आपने देख ही लिया है, लोग क्या कह रहे हैं, बिरादरी क्या कर रही है, ये मेहंदी होगी, ये माइयाँ होंगे, ये बाबे होंगे, ये कुंडे भरे जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हर मुआशरे में दो दीन साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक अल्लाह का रसूल का दीन और एक मुआशरे रिवाज का दीन। इस सारे में आपने ये देखा, फिर इसमें दिल खुलने की बातें हुई। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिलइस्लाम, आगे भी आ रहा है ये तذکرہ। दिल खुलने की चार अलामतें हमें अहादीस से मिलती हैं। फरमाया कि बंदे की रग़बत आखरत की तरफ होने लगती है, मौत से पहले मौत की तैयारी में लग जाता है, गुनाह छोड़कर इबादत में दिल लग जाता है, दुनिया से उचाट जोहद। जाहिद कौन होता है? जिसके हाथों में दुनिया हो दिल में नहीं। और ये जो मौत से पहले की तैयारी है ना, ज़रा से इसको एंजॉय करें। रमज़ान अभी आधा भी नहीं गुजरता तो लोग ईद की तैयारियां करने लगते हैं। ईद तो बार बार आएगी, मौत तो एक ही बार आनी है, तो हम मौत की तैयारियां कितने शौक से करते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत दौलत नेमत चीज़ है ना, वो मोमिन की मौत है। बड़ी प्यारी मौत होती है मोमिन की। मोमिन भी बड़ा खुश हो रहा होता है उस वक्त, तैयारियां कर रहा होता है, और अल्लाह भी, या तो नफ्समतमा, लाओ फरिश्तों मेरे पास इस रूह को लाओ। और बंदा भी बेनियाज है, जो हुआ मेरे बच्चों का होता रहेगा, कर ले मियाँ दूसरी शादी, हो जाएगा कुछ, सबको अल्लाह सब्र दे देगा, मैं अपनी फिक्र करूँ। तो लिखिए कि मौत वंस इन अ लाइफ टाइम ओकेजन आने वाला है आपका, मेरा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यानी आप क्या कह सकते हैं कि मौत किस चीज़ का नाम है? आपकी मेरी जिंदगी का एक बड़ा अहम इवेंट है और एक ही दफ़ा आएगा। आप कहते हैं ना यू लिव वंस, मैं कहती हूँ यू डाई वंस। ठीक है, और मौतें कुरान ने कह दी, फकई फतक फुरो ना, सूरह बकरा की आयत हम पढ़ के आए, वो मौतें वो दूसरी थी, लेकिन अभी आपको मुझे बस एक ही मौत आनी है। और अगर हम उसकी तैयारियां करना चाहते हैं तो क्या करें? फेथ इन एक्शन, सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह बाकी सब को राजी कर देगा। इसको तो वो खवातीन जो सारे मुआशरे और खानदान से डरती हैं, वो 3 दफा लिख लें अपने नोट्स में, रब राजी तो जग राजी, रब राजी तो सब राजी। और रब को नाराज करके किसी को भी राजी कर लें, नामुमकिन है कि वो राजी हो जाए आपसे। हर आने वाले दिन में अपने आमाल को बेहतर से बेहतरीन करना है, यानी गुड से बेटर, बेटर से दी बेस्ट करना है। अल्लाह ताला की तरफ से हलाल करदा को हराम नहीं करना इंशाल्लाह। आगे रुकू 17:141 से 144, मुशरिकीने मक्का की बिदअत। वहुअ अल्लज़ी अनशा जन्नातिन मारूशातिन वगैर मारूशात, वो वही है जिसने बागात पैदा किए, वो भी जो छतरियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबा भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबे यानी मिलते जुलते भी नहीं होते, इनके फलों में खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो इसके काटने के दिन दिया करो, और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए, और जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए फिर लफ्ज आ रहा है, खाओ खुलो पियो, क्यों अपनी मर्जी से गलत करते हो? अब एक उनकी बड़ी ही बेहुदा किस्म की, यानी बड़ी ही नॉनसेंस किस्म की बिदत थी, वो सुनिए। पैदा किए 8 नर मादा, यानी मेल एंड फीमेल, यानी भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म, आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों? तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर तुम सच्चे हो। हाईलाइट कीजिए 143। इस्लाम दलील का दीन है, मजहब मर्जी का नहीं होता, दलील के साथ चलता है। ऊंट में दो किस्म और गाय में दो किस्म, आप कहिए कि क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों? क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जबकि अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह कर दे? यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखलाता। तो आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो रहा है ना तर्जमे से, खुद साख्ता और खुदा साख्ता। साख्ता कहते बनाया हुआ, खुद साख्ता और खुदा साख्ता मजहब जब मिलता है तो टकराव पैदा होता है। खुदा साख्ता को मान लेंगे तो हनीफ और यकसू बन जाएंगे, खुद साख्ता दीन हमेशा बोझल होगा। आज उम्मते मुस्लिमा ने भी रस्म और रिवाज के नाम पर चीज़ों को बोझल कर दिया और अपने आप को दूसरी चीज़ों में डाल दिया। और आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे अल्लाह सुबहाना ताला हमें सूरत अल आराफ में 6 कौमों के बारे में बताएगा कि जिन्होंने वक्त के नबियों को, वक्त के पैगंबरों को झुटलाया और अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी तो हम सूरत अल अनाम पे है ना, लेकिन जब आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे अल्लाह का कानून हलाकत, कौमों को हलाक करना, लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को लाना। ये इन्हीं कौमों में से हम सूरत अल आराफ में जब पढ़ेंगे ना कि 6 रसूलों की तारीख़ दावत और 6 कौमों की हलाकत और इबरत होगी, उनमें से ये आखिरी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बातें हो रही हैं। यहाँ ये जुमला क्यों सुना आपने? अल्लाह के नबी की इस उम्मत पे जो आपके सामने मौजूद थी उस पे कोई पकड़ नहीं आई, ना अल्लाह ने उनको रिप्लेस किया और ना अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म किया, क्योंकि आप आखिरी नबी थे और आपकी दुआ भी थी। इन सारी बातों को सुनते वक्त आपने इंशाल्लाह जब सूरत अल अराफ में उन 6 कौमों का हाल सुनना है तो याद रखिएगा, वहां जाकर आपको याद दिलाऊंगी। खुलासा क्या है कि खुद साख्ता हलाल और हराम जहालत का समर है, फेथ इन एक्शन जिंदगी में इसराफ से बचना है, खुद साख्ता अकायद नहीं बनाने। रुकू नंबर 18 145 से 50। अल्लाह के हलाल और हराम की पाबंदी करनी है, लोगों के बनाए हुए की नहीं। قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى طَاعِمٍ، आप कह दीजिए जो कुछ अहकाम बजरिया वही मेरे पास आए हैं इनमें से मैं तो कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो, या कि बहता हुआ खून हो, या खिंजीर का गोश्त हो क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते के ना तो तालिबे लज्जत हो और ना तजावुज करने वाला हो, बाकी आपका रब गफूर रहीम है। अब यहाँ थोड़ी सी यहूदियों के ऊपर जो शरीयत में कमी पेशियाँ थी उसको भी सुनती जाइए। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियाँ हमने इन पर हराम कर दी थी, मगर वो जो इनकी पुश्त पर यांत्रियों में लगी हुई या हड्डी से मिली हो, क्यों? इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सजा दी और हम यकीनन सच्चे हैं। इस आयत पे नोट कर लीजिएगा कि दीन इस्लाम का मिजाज आसानी है, सहूलत है, नरमी है। यहूद के उलमा ने खुद साख्ता फतवों के जरिए, इज्तिहादात के जरिए, ये ना हो जाए फौजे ना हो जाए इख्तियात का तकाजा, दीन को मुश्किल से मुश्किल कर दिया, जैसे आज हमारे कर दिया। लोग खाते हुए डरते, लोग पहनते हुए डरते, लोग बोलते हुए हंसते हुए डरते। हमारे जिन में एक आम दीनदार का क्या तसव्वुर आता है, जरा सा आप सोचिए उसको। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, रोया हुआ धोया हुआ। मैं क्या बताऊँ आपको कि रियाकारी की क्या कैफियत है कि कुछ लोग दूसरों में अपने आप को दीनदार बनवाने के लिए होंठों को खुश्क, एक ऐसा सल्यूशन के जिससे होंठों पे पिपड़ियां जमी हो, और अपनी आंखें ना इसके नीचे ये जो जगह इधर हल्का हल्का सा सुरमा लगा के हल्के दिखाते हैं, अपना ये माथा है ना इधर एक हल्का सा काला निशान के पता चले कि अल्लाह के खौफ से रातों को जागते हैं तो हल्के पड़ गए, माथा टेकते हैं तो हमारे माथे पे मेहराब पड़ गई है, और देखो हम तो कुछ खाते पीते भी नहीं, पिपड़ियां पड़ गई हैं। याद ऐसा एक दीनदार तबका है, सिर्फ लोग आपको दीनदार के, और रोते ही रहेंगे। फिर कहते हैं लोग, नहीं जी हम आप जितने नेक नहीं हो सकते, बस खत्म। आप करें नेकियां, हम करें गुना, हम आपको चंदे देंगे, हम खाने पका पका के आपको भेजते रहेंगे, आप खाते रहिए, हम आपकी खिदमत करते हैं, आप दीन की कीजिए। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। क्यों वो कोई माफोकुल फितरत बंदा होता है, कोई हैंडीकैप बंदा होता है? यानी कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि आज हमारे मुआशरे में भी ये दो तबके हैं, ये गुनाहगार ये नेक, ये आलिम ये जाहिल, ये फलां ये फला, ये दुनियादार ये दीनदार, इन दोनों को शेक हैंड कराइए। एक तरफ मिस्टर है, एक तरफ मुल्ला है, मिस्टर और मुल्ला की दोस्ती करा दे, आपका दीन अच्छा है। आज कितने ही लोग हैं जिनको दीन से एक किस्म का रिएक्शन हुआ हुआ है, जैसे कभी कभी पेंसिलिन की दवा खाने से या इंजेक्शन से रिएक्शन हो जाता है। तो ये कहानियां करके लोग दीन को पहले मुश्किल करते हैं, फिर वो नाकाबिले अमल हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि चूंकि अब हमने अमल तो कर नहीं सकना, तो फिर जो अमल कर रहे हैं ना बेचारे, इनकी हम खिदमतें करते रहे और हमें दीन की बातें कहते रहे, और कोई फिर उनके बल्लू पकड़ लेता है, अच्छा हमें जाके हम भूलना नहीं, वहाँ हमें याद रखना, हमारी सिफारिश कर देना, अच्छा हम आपकी कब्र पे भी जाकर 5 रुपए की कोई न्याज चढ़ाते रहेंगे। ये सारी कहानी इधर से शुरू होती है। अल्लाह कहते से इधर हो, अल्लाह के नबी को सहाबा कराम जब देखते थे आम तरह के लगते थे, हमारे जहन में नबी सल्लम का क्या तसव्वुर आता है। दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह तौफीक दे मैं आपको सीरत भी पढ़ाऊँ। ऐसे लगता है कि वो अपने एक खुद साख्ता जो अल्लाह के नबी का हैवला सा बनाया हुआ ना, एक बहुत ही बड़ा नाकाबिले तस्खीर किस्म का एक बुजुर्ग, और कोई उनके पास नहीं जाता। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं थे, मस्कीन तबा थे, अच्छा मिलता अच्छा खा लेते, एक दिन रोजा रख लेते तो एक दिन खा भी लेते, अच्छे से अच्छा भी खाया, बुरे से बुरा भी खाया, महंगे से महंगा भी पहना अल्लाह के नबी ने। साहबा कहते हैं एक मौके पर अल्लाह के नबी ने खुला पहना, 1,000 दीनार उसकी कीमत थी, किसी जगह से आया आपने पहन लिया, फिर सदका कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, हम इन्हीं चीजों में खोकर असल वो जो मारफत इलाही है और जो दीन का काम है उसको पीछे डाल देते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अज़ाब मुजरिम लोगों से टलेगा नहीं। ये मुशरिकीन यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम शिरक ना करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके उन्होंने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे सामने जाहिर करो। ये दूसरा मुकाम है दलील की बात है। तो किसी को कोई नेकी का अमल करता देखे ना उसकी दलील मांगे। आज कैसे लोग व्हाट्सएप पे आगे से आगे बातें करते हैं, अनयूजुअल बातें, ये पढ़ो तो ये सवाब, ये करो तो ये सवाब, ये खाओ तो। मैं एक लफ्ज नीचे लिखती हूँ कि रेफरेंस प्लीज, फिर कभी नहीं जवाब आया। आज वो मुल्क जहाँ आप एक पानी की बोतल लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं आप खानों में से, दीन ऐसी पेश कर दें मैं जो मर्जी कह दूँ। देखिए ये कुरान की आयतें आपकी आंखों के रास्ते इंशाल्लाह आपके दिल दिमाग पे जा रही हैं। आप यहाँ जो बात सुनेंगे ना आपका दिल कहेगा ये पारे के दौरान सुना था, ये कुरान का तर्जमा था, और ये तो तर्जमा ही है। 90% आप यहाँ तर्जमा सुन रहे हैं और 10% मैं आपकी कुछ मदद करती हूँ एक्स्ट्रा बातों में। तो ये कुरान हटा दें तो आप कहेंगे शायद मेरे ये ख्याल आता है। दोहरे कुरान का सबसे बड़ा ये फायदा मुझे लगता है लोगों में कि एक गो में थोड़े से अरसे में उनको पूरे कुरान से कम अज कम एक रूशनासी तो हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला यही फरमा रहे हैं, दलील की बात करो, दलील दलील। आज हमारे मुल्क में दलील का तसव्वुर कम होता जा रहा है कि आज मुसलमान दलील की बात नहीं करते। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल पच्चू से बातें बनाते हो, यानी अजम्पशंस, सिर्फ अंदाजे क्यास। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो जाता तो तुम सब को राह रास पर ले आता। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम कर दिया है, फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इसकी शहादत ना दीजिए, और ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात का इत्तबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं और जो आखरत पर ईमान नहीं रखते। क्या पता चला, और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। आपको इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द और आपका वजूद महसूस हो रहा है? पिछला पारा पढ़ते हुए पूरा अल्लाह ताला की जात पे बातें थी, और इस बारे में नबी 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 का जुटलाना, मौजज़े दिखाओ, यानी नबी की जैसे एक जाल साजी, मुलम्मा साजी, रोल गोल्ड, आर्टिफिशियल नेकियां, असली के मुकाबले में नकली दीन। आज हमारा नकली दीन ज्यादा आसान है, मशहूर, और क्योंकि उस नकली दीन में आपको छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, जो चाहो करो, जो चाहो जिंदगियां गुजारो, रस्में करो, तुम मुस्लिम लगो ना लगो, जो तुम्हारी जिंदगी, बस ये चार छह काम कर लो, ये बड़ी रात आ गई, ये छोटी रात आ गई, ये इबादत की रात है, ये जागने की रात है। भाई बड़ी रात तो सारी रातें बड़ी, यानी कहने का था कि चंद रातें मना लो, चंद दिन मना लो, चंद ओकेजन कर। हम ओकेजनली मुस्लिम हो गए, तो यहाँ एक जुमला लिखिए, हमारे और सहाबा के ईमान में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो 24/7 के मुस्लिम थे, 365 days ऑफ अ ईयर के मुस्लिम थे, हम आज हंगामी हालात के मुस्लिम हैं। हम आज के दौर में मुसलमानों को देखें तो वो सीजनल मुस्लिम है, जैसे रमजान का सीजन मुसलमानों का, ईद पता नहीं किसकी है, फिर ईद उल अदहा आएगी तो फिर कुछ मुस्लिम हो जाएंगे, हज पे जाएंगे तो फिर सीजन, यानी हम जैसे वो कुछ दुकानों में जो काम होते हैं ना, वो सीजनल बेस्ड होता है, ईद का सीजन है, बहुत बिक्री हो रही है, हमारा भी कुछ हालात ऐसे ही हो गए। हालांकि इस्लाम आपको 24/7 का मुस्लिम देखना चाहता है। वही लफ्ज़ याद रखिए कि अब्द और आबिद का फ़र्क। इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत है, 150 अलनाम, और इसका थीम क्या है? हमारा दीन दलील का दीन है, यानी दीन दलील के बगैर तो बातें ही बातें हैं। और जिस तरह से आप और मैं इस वक्त ये बातें सुन रहे हैं ना, मुझे तो नहीं पता आपका क्या मामला है, क्योंकि इस दफ़ा बात ईमान की हो रही है ना, तो मुझे नहीं पता कि अब आपका ईमान कितना पका है, क्योंकि ईमान भी फल की तरह पकता है, पिछले पारे के एंड पे देखा था ना। अपने आप से पूछिए, इन सारी आयतों को पढ़ने के दौरान मैं ज़रा आपको रिलैक्स करना चाह रही हूँ, आपका ईमान कहाँ तक पहुँचा, किस हद तक आप अपने आप को ईमान के साथ जोड़ रही हैं, कहीं घबराहट तो नहीं है, रिलैक्स रहिए। अल्लाह ने अगर आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए चुन लिया है जो आपने कभी सोची नहीं थी, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप देखेंगे कि बाय द टाइम वक्त के साथ सब कुछ आपका ठीक होगा। सिर्फ सेल्फ एनालिसिस, आपने आप को चेक करते ही रहिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है जो आप इन आयात में देख रहे हैं, और वो क्या कि जब कौमें सरकश हो जाती हैं तो नेमतों से महरूम हो जाती हैं, और आज रिबेलियसनेस की, सरकशी की को हद है, हमने तो हदों को भी हद से गुजार दिया। फेथ इन एक्शन, क्या सराहियाँ नहीं करनी, दलील से बात करनी है और समझानी है और समझनी है, और कोई दलील दे तो आराम से सुन लेना है, छूटी गवाही नहीं देनी। आगे रुकू नंबर 19 है, 151 से 154, बहुत खूबसूरत अहकाम आ रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसको फील कीजिए। अगर आपसे मैं कहूँ ना, पिछली सारी शरीयतों का खुलासा उम्महाते शरिया, रुकू नंबर 19 आयत 151 से 154, कुल तआलू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैया। आप कहिए कि आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है, वो ये है क्या? अब यहाँ से आप ना काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती करिएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, और माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो, और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो, हम तुमको और इनको रिस्क देते हैं, और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, ख्वाह वो एलानिया हों ख्वाह वो शीदा, और जिसका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया है इसको कत्ल मत करो, हम अगर हक के साथ इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो, और यतीम के माल के पास भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो काबिले तहसीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द तक पहुँच जाए यानी बालिग हो जाए, और नाप तोल पूरी करो इंसाफ के साथ, हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो गो वो शख्स कराबतदार ही हो, और अल्लाह ताला से जो अहद किया इसको पूरा करो, इनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो, और ये कि ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, बस इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो, और वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसको हाईलाइट कीजिए, इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो, और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो ताकि वो लोग अपने रब की मिलने पर यकीन रखे। तो क्या पता चला इस रुकू में एक आयत ईमान से मतलक 154 अलनाम, इसका टॉपिक लिखिए पूरी इतात करने वाला अल्लाह की रहमत के सायों में होगा ना के अधूरी इतात वाला। हमने इसमें औलादों के कत्ल की बात देखी। आज दुनिया में औलाद का कत्ल जिस तरह खुशनुमा बना दिया गया उसकी मिसाल तो शायद मक्का वालों को भी ना मिलती हो। अगर आज की मौजूद दुनिया को थोड़ा सा इस आयत के आईने में देखें तो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी को इख्तियार किया गया और आज चाइना में हाल क्या है कि बच्चे पैदा नहीं किए जा रहे। जापान के लफ्ज़ को अगर आप देखें कि जापान में क्या हो रहा है और किस तरह के हालात हैं, तो कहते हैं कि जापान में इस वक्त जो बूढ़े लोग हैं इस जनरेशन में, उनकी टेक केयर के लिए कोई जवान बंदा कम मिलता है। ऑफ कोर्स एकदम तो नस्लें नापैद नहीं होती, टाइम लगता है, बूढ़ों को संभालने वाला कोई नहीं, लोग बच्चे पैदा करने से डर गए। और आपको पता कि अबॉर्शन किस नाम पे आम हुआ? वेमेन राइट, यानी इतने बच्चे पैदा करेगी तो औरत की तो हक तलफी होगी। और आज वो लोग एक बच्चा पैदा करने पे, यूरोप के कई मुल्क नाम लिए बगैर बताऊं, एक बच्चा पैदा करने पे लाखों रुपया देते हैं। बच्चे की तैयारी कर लो, नॉर्वे में एक बच्चा पैदा करो, जाकर 90-95 हज़ार करोन लो और जाके बच्चे की शॉपिंग करो, बस तुम बच्चा पैदा करो। नहीं मैं जॉब करती हूँ, अच्छा जाओ तुम्हें 1 साल की मामा परमिशन देते हैं। नहीं मियाँ और भी बच्चे हैं, तुम्हारे मियाँ को भी 3 माह की छुट्टी देते हैं। इसके बावजूद वो लोग औलादें पैदा नहीं कर रहे और मुसलमान मुसलमान हो रहे हैं वहाँ। मुसलमानों और कुछ नहीं करके, वहाँ तबलीग करके नहीं पढ़ रहे, बच्चे पैदा करके पढ़ रहे हैं, पैसे भी मिलते हैं, मौज भी है, छुट्टी भी हो गई। पिछले 10 साल में, यानी ये तो एक लंबा फिगर है जिसको मैं क्या इस वक्त यहाँ खोलूँ, कि जिन मुल्कों में 0% मुसलमान थे, सिर्फ ये लास्ट 30 ईयर्स में देखिए तो यूरोप में इस वक्त कई मुल्कों ने अलर्ट दे दिया कि जिस रेशियो से वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये 20, 30 कोई 40 इसका कहते हैं पूरा यूरोप मुसलमान होगा। चलिए कुछ तो करें, जो कर सकते हैं वो तो करें। तो याद रखिए दीन इस्लाम अदल का दीन है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अदल दिया, औरत को औरत के हकूक दिलाए, मर्द को मर्द के दिलाए। आप औरत पे रहम खा रहे हैं कि उसका बच्चा ना, और हालांकि आपको पता है कि बच्चे पैदा करने वाली औरतें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो अल्लाह के अदल की गवाही तो जन्नत में जाने वाले देंगे ही, आगे हम पढ़ेंगे कि जहन्नुम में जाने वाले भी अल्लाह के अदल की गवाही देंगे। आपके मेरे अमल की बात क्या है कि अखलाकी बुराइयों से बचना है, औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल नहीं करना और बेहयाई के करीब नहीं जाना, ये नहीं कि करनी नहीं, करीब ना दे, हर उस दरवाजे को बंद कर दीजिए जिसको खोलने के बाद आपको फितने में जाने का खतरा हो। आगे रुकू नंबर 20, 20, 155 से 165, अल कुरानु हयाती, कुरान मेरी जिंदगी है, वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और ये किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी खैर और बरकत वाली है, बस इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। कहीं तुम लोग यूं ना कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फिरके थे इन पर नाजिल हुई और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे, या यूं ना कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज्यादा राह रास्त पर होते। बस अब तुम्हारे पास रब के पास से किताब वाजे और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है। अब इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी आयतों को झूठा बताए और इससे रोके। हम जल्द ही इन लोगों को जो हमारी आयतों से रोकते हैं, इनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए, या इनके पास आपका रब आए, या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम नहीं आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम भी मुंतजर रहो, हम भी मुंतजर हैं। लिखिए दो दरवाजे हैं, एक मौत का और एक तौबा का। मौत का दरवाजा खुलते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता है इसमें। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है। फिर इनको क्या हुआ, फिर इनको इनका किया हुआ जतला देंगे। जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा इसको इसके बराबर ही सजा मिलेगी, और इन लोगों पर जुल्म न होगा। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह ताला की तरफ यकसू थे और वो शिर्क करने वालों में से न थे। आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहाँ का मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है कि मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। ये है सूरत का ततिम्मा। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे मोमिन की पूरी जिंदगी अल्लाह के रंग में रंगी होती है, इसीलिए फरमाया आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है और वो इसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, वो फिर वो जता लाएगा कि जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीजों में जो तुमको दी हैं। बिल यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफरत करने वाला मेहरबानी करने वाला है। क्या खूबसूरत आयत है। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत इसमें, अनाम 158, जिसमें अल्लाह ने एक बहुत बड़ी खबर दी। ला यनफ़ऊ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब। आज अमल करके जिंदगी की मोहलत से फायदा उठा लीजिए। आज दारुल अमल है, आखरत में कोई अमल नहीं है, कब्र में कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई कुरान नहीं है। आज अमल कीजिए, कल वहाँ फायदा उठाएंगे। याद रखिए कि ये जो आप और मैं इल्म ले रहे हैं ना, ये अभी कच्चा है। जब ये इल्म पुख्ता होगा ना तो मीठा होगा, और इल्म का सबसे मीठा फल अल्लाह की कुर्बत और दिन ब दिन अमल में बढ़ना। मैं आप सबको ये दुआ दूंगी कि इस दौरे कुरान के दौरान ही आपको अल्लाह की कुर्बत भी मिले और अमल भी करने वाले बने, और अल्लाह के रास्ते की पैरवी ही उम्मते मुस्लिमा की वहदत और इज्तमा की बुनियाद है। हम सब कुरान पढ़ते हैं, इसी पे अमल करेंगे तो एक रहेंगे। शैतानी राहें फिरकाबाजी का सबब हैं। दुनिया में जब बिदात बनती है ना, उसी से ही फिर उम्मत भी टूटती है। तो इस सूरत के एंड पे ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह इस कुरान की नेमत से फ़ायदा उठाने वाला बना। हर नेमत को इम्तिहान समझते हुए इस्तेमाल करेंगे, और जितना ज़्यादा नेमतों का एहसास होगा उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सूरत पूरी हुई, फरिश्तों के जलों में नाजिल की हुई सूरत अलनाम थी, और आज आपको पता चला कि अलनाम से मुराद क्या है। उनकी रस्में जो अनाम यानी कैटल से मुतल्लिक थी, जानवरों से, उस पे ये सूरत थी।